can we say that that constant may is our Atma?
That constant?
May, which is always there with us. From the time, not even born. So, is that our Atma?
देखो यहाँ पे आत्मा जब हम बोलते हैं ना, अब आप आपकी क्या डेफिनेशन है आत्मा की मुझे नहीं पता है ना, हम सबकी अलग अलग होती है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर से निकलती है, क्योंकि हम तभी तो बोलते हैं ना भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जब भी किसी की मृत्यु होती है, ऐसा ही बोलते हैं। तो कि वो आत्मा कुछ निकल के चली गई तो इसका मतलब वो आत्मा मैं हूँ, क्या आपका भी उसी आत्मा से मतलब है जो इस शरीर के निकलने से बाहर चला जाएगा? Is that what you mean by Atma? I'm asking you, Swati.
Yeah, yes, yes.
No, that is not. और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जब भी किसी की मृत्यु होती है कोई आत्मा वात्मा बाहर नहीं जाती है, सिर्फ आपकी एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाती है। आप यहाँ पे तीन शरीरों में हो, ये जो आपको शरीर आ रहा है,
you were explaining three bodies.
हाँ, three bodies. देखो हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये हमारा जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं या सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं या कॉजल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मोटा मोटा तीन ही डेफिनेशन तीन दे रही हूँ, वैसे उसमें भी बहुत सारे अंदर होते हैं, तो तीन पे हम चलते हैं। तो क्या है ये, हम इसको जैसे मैं हमेशा फोन का एग्जांपल देती हूँ कि आपको जो एक फोन नजर आ रहा है वो तो हार्ड बॉडी है उसकी, और उसके अंदर जो चिप है उसकी वो सॉफ्टवेयर है ना। तो हार्ड बॉडी और सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने बाहर का हार्ड कवर छोड़ दिया, तो आपका भौतिक शरीर रह जाता है और फिर उसमें से आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल जाता है। तो जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम डेथ भी नहीं बोलते हैं, आपका एस्ट्रल बर्थ हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म जगत में जन्म ले लेता है, और वो सूक्ष्म जगत कहाँ है, वो भी यहीं पे है, अभी है, इसी वक्त है। लेकिन क्योंकि हमने ये शरीर अपने ऊपर धारण किया हुआ है, इसलिए हमें वो सूक्ष्म जगत नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए हमें वो नजर नहीं आ रहा है। तो जब मृत्यु होती है, अब हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो कोई आत्मा नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो आत्मा, अगर हम स्वाति टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर हम आत्मबोध के हिस्से बताएं तो आत्मा तो हमेशा है, और आत्मा में ये सब हो रहा है। आत्मा के अंदर शरीर है, आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के अंदर कारण शरीर है। ओके, आत्मा इज द मेन थिंग, ये सब कुछ आत्मा के अंदर है। आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम आत्मा के अंदर है।
माने का हम इसको चेतना तो बोल सकते हैं।
किस चीज को?
जो ये मतलब ये डेफिनेशन आत्मा की दे रही थी, जिससे जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पीछे जो बॉडी है उसको हम चेतना तो बोल सकते हैं?
नहीं, नहीं बोल सकते चेतना, ये नहीं होती। नहीं,
चेतना भी ये नहीं होती।
नहीं, और यहाँ पे हम लोग कोई भी, आप बिल्कुल सवाल पूछो और क्लियर कर लो पॉइंट आउट कि हम यहाँ पे इनके क्या मतलब होंगे, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। अगर आपने किसी भी वर्ड का मतलब गलत समझ लिया यहाँ पे, तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चेतना भी ये नहीं होती। मैं बताऊंगी आगे चेतना क्या होती है, ये नहीं होती। ठीक है,
मोनिका, व्हेन यू सेड लाइक वी आर एन आत्मा, सो दैट मींस वी हियर इज द लिटिल सेल्फ,
फॉरगेट द बॉडी माइंड। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें ये है, हाँ बोलो,
हम शरीर मन को बोल रहे हैं।
किस चीज को?
मन को बोल रहे हैं। मन जैसे एक तो होता है हमारा बाहर का पार्ट जो, हाँ, इस शरीर है जो इस करते हैं, एक होता है हमारा मन, एक होती है हमारी बुद्धि। ठीक है, तो जो मन भी तो रियलाइज करता है ना काफी चीजें, तो हम शरीर उसको थोड़ी बोल रहे हैं।
नहीं,
सूक्ष्म शरीर में आपका मन और बुद्धि दोनों है, जिसको हम चित्त बोला जाता है। मन एक बहुत छोटा वर्ड है, हम चित्त की बात करते हैं। ठीक है, उसमें मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं, वो दोनों ही आपके सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। तो अगर हम इसको दूसरे समझने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की, तो जब हम बोलते हैं कि जो फीलिंग हो रही है, हमने जो बोला ना कि बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, या डर लग रहा है, या समझ में आ रहा है, ये किसको हो रहा है? क्या ये भौतिक शरीर को हो रहा है? नहीं, ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर को हो रहा है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर भी बहुत बड़ा है, सूक्ष्म शरीर में ही आपका जो चित्त है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं।
वही अहंकार और ये सब तो भाव मन के हो गए ना, सब मन और बुद्धि के।
बिल्कुल, ये सब सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। तो जब भी हम, हाँ पूछो,
जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे पुराने लोग ये बोलते थे उसका सूक्ष्म शरीर ना 14 डेज तक यहीं रहता है, जो बोलते थे।
हाँ।
मतलब जैसे हमारे करते हैं, तो वो उस सूक्ष्म शरीर से क्या मतलब है?
यही मतलब है। और लेकिन वो जो बोलते थे कि 14 दिन तक यहाँ रहता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सूक्ष्म शरीर एक सेकेंड में शिफ्ट हो जाए और वो चला जाए आगे दूसरे लोगों में, और ऐसा हो सकता है 14,000 साल तक भी वहीं पे रहे। तो ये जो 14 दिन का बनाया है, ये सिर्फ क्या होता है, देखो जब भी हम सोसाइटी में, मासेस में कोई एक चीज बतानी होती है, हमें एक रूल बना देना पड़ता है। इसका मैं सबसे सिंपल एग्जांपल आपको ये दे सकती हूँ, जैसे हम आजकल सेशंस कब करते हैं अपना, बुधवार को 3:30 से 5 बजे, है ना, ये हमें सूट करता है। आज हमने चेंज कर लिया, सूट नहीं किया, 4:30 से 6 कर दिया। अब सोचो कल को कोई सोचे कि आत्मबोध का सेशन सिर्फ 3:30 से 5 बुधवार को ही होता है, हमारे सेशंस खत्म हो चुके हैं, एक नया ग्रुप बन गया है और उनको डिसाइड करना है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, वो हमें पता है जब वो मुनि सेशन लेती थी ना 3:30 से 5 बुधवार, चाहे किसी को सूट करे या नहीं करे, वो तो उसी दिन होता है। आप समझ रहे हो, जबकि वो कभी भी हो सकता है, पूरे इट कैन बी एनी डे ऑफ द वीक। तो लेकिन क्या होता है, मासेस को कुछ एक आंसर चाहिए होते हैं देने के लिए। जब आपकी बुद्धि कम होती है और जब बहुत लोगों को कोई चीज़ बतानी होती है, तो आप एक रिचुअल बना देते हो, आप एक रूल बना देते हो टू मेक लाइफ ईजियर फॉर पीपल। नहीं तो लोग पूछते ही रहेंगे और अपना, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगा रहे। अगर आप अपने बुद्धि की इस्तेमाल करोगे तो आपको ये कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों हमारे अंदर ये सब चीज़ें भर दी गई हैं, तो हमें लगता है कि 14 दिन तो हमें रखना है या क्या करना है, या जो भी हमारे रिचुअल्स उसके हिसाब से बने हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कुछ आत्माएं होंगी जो 14 दिन ही रहती हैं, बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे बहुत सारे सेशंस होंगे जो 3:30 से 5 ही होंगे। लेकिन इज दैट अ रूल? नो, इट इज नॉट अ रूल। तो लेकिन वो जो जाता है, हाँ वो सूक्ष्म शरीर जाता है बिल्कुल। वो जो बोलते हैं कि वो घर में रहता है या घूमता है, तो कभी कभी जो वो निकलता है बाहर, उसको रियलाइज भी नहीं होता कि उसका शरीर छूट चुका है। क्योंकि जो आपका शरीर है, जब आप निकलते हो, सूक्ष्म शरीर एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है जो आपका ऐसा शरीर है, आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा नजर आएगा, सेम टू सेम। तो इसलिए रियलाइज ही नहीं होता कि आपकी डेथ हो गई है, तो वो वहां पे घूमता रहता है। बट इट कैन बी एनी टाइम, एनी टाइम। इज दिस क्लियर?
यस, वेरी।
अब ये देखो, फिर से आत्मन की ही बात आ रही है। आत्मन इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, इटर्नली शाइनिंग इन ऑल इट्स ग्लोरी। ये मैं सेकंड पैराग्राफ का पढ़ रही हूँ, सिर्फ 2-3 लाइन्स ही पढ़ूंगी, फिर मैं बताती हूँ उसके बारे में। इट्स लाइट इज द लाइट ऑफ ज्ञान, देर इज नो इग्नोरेंस इन द आत्मन। What this means is that if an enlightened being's Atman is the self-illuminating essence of Gyan, so is the Atman of an ignorant being. There is no difference at the plane of the Atman. ठीक है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे। जब हम आत्मा की बात करते हैं, हमें क्या लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सोचते हैं शरीर से आत्मा निकल गई। अब सपोज 5 लोग मरे हैं, तो क्या 5 आत्माएं निकल गई, है ना? यही मतलब होगा ना कि 5 आत्माएं निकल गई, 5 अगर लोग मरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर हम लोग यहाँ पे 20-25 लोग जितने भी हैं, क्या यहाँ पे 20-25 आत्माएं हैं हमारे अंदर? वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आत्मन सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो सबका एक है, ठीक है। और चाहे तुम ये, बस सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि एक कोई जानता है उस आत्मन को और दूसरा नहीं जानता, दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन क्या जो नहीं जानता उसके पास आत्मन नहीं है? बिल्कुल है, उसके पास भी उतना ही आत्मन है। एक टेररिस्ट के पास भी उतना ही आत्मन है जितना कि एक संत के पास है, ठीक है। गरीब हो, अमीर हो, स्मॉल सेल्फ में क्या चल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन, शरीर, बुद्धि के स्तर पर क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मन सबका बिल्कुल एक ही है। ठीक है, तो उन्होंने जैसे बोला कि इग्नोरेंट बीइंग और एनलाइटेंड बीइंग दोनों का आत्मन एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों। फिर वो आगे बोलती हैं, देखो लास्ट पैराग्राफ की लाइंस, लेट मी पुट इट अनदर वे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इंटेलेक्ट, माई एसेंस इज द आत्मन, दिस इज द वेरिटेबल वेदांतिक ट्रुथ। असल में यही है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरा तत्व आत्मन है, वही आत्मन और यही सच है, और वही आत्मन सब में है, सब में, पेड़ पौधों में भी वही है, पक्षियों में भी वही है, जानवरों में भी वही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें वो आत्मन नहीं है। तो आत्मबोध का मतलब क्या होगा, जब रियलाइजेशन होगी तो उसका क्या मतलब होगा, अगर वो सबके पास है, जैसे बोला आपके पास हमेशा था, है और रहेगा, सिर्फ फर्क क्या होता है, आप उसको, इट्स लाइक ओ अरे ये तो था ही, इट्स लाइक यू जस्ट गेट टू सी इट, आपको समझ में आ जाता है कि अरे हाँ यही तो था, और फिर आप जो अपने आप को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है इस मन शरीर बुद्धि के तल पे, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वहाँ से शिफ्ट होके आत्मन पे चली जाती है, अब आप अपने आप को वहाँ से आइडेंटिफो करते हो यहाँ की बजाय, बस वो शिफ्ट होता है, दैट इज ऑल, और कुछ भी नहीं होता, वो जो हमेशा था। अब देखो उन्होंने भी आगे यही बोला है कि उस दिन वहाँ पे 2500 लोग थे जो सत्संग सुन रहे थे गुरु माँ का, तो उन्होंने बोला कि क्या यहाँ पे 2500 आत्माएं हैं, इसका मतलब है ना, अब जो 2500 लोग हैं उनके शरीर अलग हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, सबकी बुद्धि अलग होगी, सबकी समझने की शक्ति अलग होगी, सबकी सुनने की शक्ति अलग होगी, सबके अलग अलग इम्प्रेशंस होंगे, सबके अलग अलग मेमोरीज होंगी, अलग अलग इच्छाएं होंगी, भावनाएं होंगी, सब कुछ अलग है सब, बट दे आर डिफरेंट माइंड इंटेलेक्चुअल यूनिट्स। प्लीज़ इसको आप लोग वो कर लो, सर्कल कर लो, हिंदी में क्या वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए, कोई बताएगा
किसके लिए?
सेकेंड पेज पे है कि सबके अलग अलग चीज़ें हैं, वो जो 2500 आत्माओं का बताया, सो देर आर डिफरेंट माइंड इंटेलेक्चुअल यूनिट्स, इसको उन्होंने हिंदी में क्या वर्ड यूज़ किया है इसके लिए, मेरे ख्याल से मन बुद्धि यंत्र बोला होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिसको मैं माना हुआ है, जिसको मैं सोचता हूँ कि ये मैं हूँ, ये मुनि है, ये मोनिका है, नहीं, ये सिर्फ एक यंत्र है, मन और बुद्धि का बना हुआ यंत्र बस। जैसे कि आपकी, अगर आप किचन में जाते हैं, आपकी किचन में बहुत सारी ये हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्रिज है, ओवन है, मिक्सी है, गैस है ना, अब देख सब अलग अलग यंत्र हैं और सबके अलग अलग काम हैं, सब अलग हैं, लेकिन उन सब को चलाने के पीछे एक ही ऊर्जा है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? आपकी किचन में ओवन भी उसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और आपका फ्रिज भी, और आपकी मिक्सी भी, और आपकी लाइट्स भी, है कि नहीं? वो अलग अलग नहीं है वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब बल्ब है, सपोज वो सोचे यार इतनी बड़ी किचन, सारे तो इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, देखो फ्रिज कितना बड़ा है इनका, इनका तो ओवन इतना बड़ा है, और मैं बेचारा छोटा सा बल्ब, है ना, वो ऐसा सोच सकता है, मैं तो कितना छोटा सा बल्ब हूँ। अब उसका क्या हो गया है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को एज अ बल्ब, या जो फ्रिज है सबसे बड़ा आपकी किचन में, उसके ऊपर अहंकार हो जाए, मैं सबसे बड़ी हूँ, देखो इस किचन में कितना बड़ा हूँ मैं, कितना सारा सामान अपने अंदर स्टोर कर लेता हूँ, है ना, तो हम क्या, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप एज एन इंस्ट्रूमेंट मत आइडेंटिफाई हो, हम बल्ब को भी यही बोल रहे हैं और फ्रिज को भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ होनी चाहिए जिससे तुम चल रहे हो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिना, आपका फ्रिज भी बेकार है, आपका ओवन भी बेकार है, आपका बल्ब भी बेकार है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है, है कि नहीं, राइट?
Yes.
ऐसे ही आत्मन के बिना आप अमीर हो या गरीब हो, या आप बहुत बड़े हो या छोटे हो या जो भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, सिर्फ आत्मन इज द रियलिटी, क्योंकि फ्रिज आज है नहीं रहेगा, बल्ब आज है कल नहीं रहेगा, मिक्सी आज है कल को बदल जाएगी, ऐसे, लेकिन बिजली बिजली रहेगी, ऐसे ही हम लोग बदलते रहेंगे, लेकिन जो आत्मन है वो हमेशा वही रहता है। इसका मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम देखते हैं एक घड़े को, ठीक है, हमने एक मिट्टी का घड़ा लिया, अब अगर हम पूछें उसको तुम कौन हो, उसके पास दो आंसर्स हैं देने के लिए। एक तो वो ये बोल सकता है मैं घड़ा हूँ, है ना, घड़ा हूँ। अब घड़ा बोलने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, घड़ा तो है, लेकिन घड़ा पक्का टूटेगा, कोई गारंटी है कि घड़ा हमेशा रहेगा? नहीं है ना, टूटना ही है घड़ा एक दिन। तो जब वो घड़ा टूट जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा, अरे मैं तो टूट गया, है ना। या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैं छोटा घड़ा हूँ, एक बड़ा घड़ा है, या वो ये बोल सकता है मैं तो बहुत बड़ा घड़ा हूँ, बाकी घड़े तो बड़े छोटे हैं, यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन घड़े की जगह वो ये सोचे, मैं उसको पूछूं तुम कौन हो, और वो बोले मैं मिट्टी हूँ, अब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, समझ गए, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली घड़ा क्या है, मिट्टी ही तो है घड़ा, तो हमने उसको एक शेप दे दिया, एक फॉर्म दे दिया, तो वो हमें घड़ा लग रहा है तो मिट्टी ही। तो वो जब तक घड़े से आइडेंटिफाइड है तब तक दुख है, लेकिन जब वो मिट्टी से आइडेंटिफिकेशन कर लेगा तब कोई दुख नहीं है, क्यों, अब वो उसका कभी खात्मा नहीं होगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, हम जिस यंत्र, ये एक यंत्र है सिर्फ, हम इस यंत्र से आइडेंटिफाइड हो गए हैं, और इस यंत्र के पीछे जो आत्मन है, हमें अपनी आइडेंटिफिकेशन वहां पर शिफ्ट करनी है, बस यही करना है।
मोनिका,
हाँ जी,
अगर हम इसको रिलेट करें एनर्जी के साथ, आत्मन इस एनर्जी, जैसे तुम एग्जांपल दे रही हो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एनर्जी है जिसको हम डिवाइन लाइट बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं, बात तो वही फिर वही आ गई ना, मतलब कि ये आत्मन क्या है, ठीक है ना, वहीं पे हम घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं फिर, क्योंकि हमारे अंदर बसा ही वही है, ठीक है, क्यों हम सोचते वही है, उसी तरीके से हम सोचते हैं कि ये वही चीज है,
ठीक है। पर तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है कि क्या वो एनर्जी वो आत्मन है, नहीं, वो एनर्जी भी वो आत्मन नहीं है। जब हम देखो एग्जाम्पल देते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो समझाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वो 100% अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, या घड़े का एग्जाम्पल लेंगे, तो मिट्टी भी एक तरह से कुछ है जो रहता है, लेकिन जब हम आत्मन की बात करते हैं वो एनर्जी के भी पीछे है, वो एनर्जी भी नहीं है, एनर्जी भी उस आत्मन में है। और तुम देखो एनर्जी भी तो चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा है, कम है, कभी नहीं है, कभी है कि नहीं। तो आत्मन ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा है और रहेगा, एनर्जी भी नहीं है। एनर्जी जो है वो तुम्हारे इस मनो शरीर यंत्र को चला रही है, वो बहुत सूक्ष्म है, और ये चीज़ हम बहुत बार ये गलती कर जाते हैं कि हम उस एनर्जी को ही आत्मन समझ लेते हैं, पर वो भी नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, फिर से ज्ञान मार्ग पर ऐसा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मार्ग में जाओगे, अगर यही आप मेरा क्रिया योग का सेशन अटेंड करोगे, तब मैं आपको क्या बोलूँगी कि आपको एनर्जी फील कर दी है। मैं ये नहीं बोल रही कि एनर्जी आत्मन है, वहाँ पे भी ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पर एनर्जी की इम्पॉर्टेंस है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर एनर्जी की भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाओ तो प्लीज़ आस्क मी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ कि दो अलग अलग चीज़ें साथ में चल रही हैं, बट इट्स ओके, ठीक है, हम लोग करेंगे।
हेलो,
हाँ जी बोलिए,
हाँ जी बोलिए,
शायद उनका लॉग आउट हो गया। हाँ रीना, पहले आप बोलो, इतने वो आ जाएंगी उनका।
मैं ये बोली थी कि जैसे घड़ा मिट्टी का बना, ठीक है ना, तो जो मिट्टी है वो कारण हुई घड़ा घड़ा बनने की, ठीक है ना, तो वो समझ लो इसका मतलब जिससे हम बने हैं, या मतलब हम तो हम है ऑलरेडी वर्ल्ड में, और सबके उसी से बने हैं, मतलब सभी एक ही उससे बने ना, तो वो आत्मन हुई ना जिससे हम सभी बने हैं, मतलब सभी एक ही हैं, बस सबके रूप ये सब ये अलग अलग हैं, यही कहना चाह रहे हो ना आप?
हाँ बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि उसी से वो ही है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट होता है कि कण कण में भगवान बसा है, या भगवान ही है, तो वो आत्मन ही है। हाँ बिल्कुल,
तो उस रूप को आप विजुलाइज करने के लिए आप अपने माइंड से कुछ भी कर सकते, ये होगा
तो आप
रूप भी तो होगा ना जिससे हम बने हैं। हम मान लो विजुलाइज करते हैं कि वो एक है जिससे हम बने हुए हैं। अब वैसे तो नहीं, फिर तो शरीर का ही ध्यान आएगा, एक जो इन चीजों को सबको देख रहा है पीछे से। अब मैं कोई आंख बंद करके कुछ भी सोचती हूँ या ये बुद्धि क्या सोचती है, ये कि एक चीज है ना जो पीछे रहती है, जो ये चीजों को देख रही है कि क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, भौतिक शरीर क्या कर रहा है, एक चीज वो जो पीछे देख रही है वही आत्मन उसका स्वरूप, मतलब उसका वो कैसा रियलाइज होता है, स्वरूप कह देते ना आप, मैं उसको आपको उसको पिक्चराइजेशन तो हम कर ही नहीं सकते, तो किस फॉर्म में है वो भी नहीं कर सकते।
वो निराकार है, यहीं पे तो निराकार का आ जाता है ना, स्वरूप है ही नहीं, साकार है ही नहीं। और साकार क्या है, जो सब कुछ जो नजर आ रहा है वो उसी का ही साकार रूप है।
हाँ जी, आप समझ गए।
तो क्योंकि जैसे ही हम देखो, अगर हम मिट्टी को भी बोलें, चलो घड़ा टूट गया, लेकिन मिट्टी की भी फिर भी कोई ना कोई शेप, वो एक कुछ एक ऐसे रबल सा बन जाएगा, है ना, कुछ तो होगा, तो शेप तो कुछ आ गई, लेकिन शेप आ गई तो क्या वो है, नहीं, तो वो मिट्टी तो कैसे भी हो वो मिट्टी ही है ना,
मिट्टी ही है।
हाँ, तो शेप नहीं दे सकते हम, साकार रूप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसलिए ज्ञान मार्ग पर कोई विजुअलाइजेशन साकार वो है ही नहीं, क्योंकि जब तक हम वहां पे एक कुछ प्रोसेस देने की कोशिश करेंगे, एक फॉर्म देने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम छूट जाएंगे, फिर हम जहाँ जा रहे हैं उस जर्नी से छूट जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने वही बताया आगे कि ये जो मैं माइंड इंटेलेक्ट यूनिट हूँ, मन बुद्धि यंत्र जो है, तो उस बुद्धि के पीछे कौन है, मतलब इस मन शरीर के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे ही वो आत्मन है, वो रियल सेल्फ है। लेकिन वो जो आय है वो ये आय नहीं है जिसको हम समझते हैं, कि जैसे अगर मैं नाम लूँ, अभी मैं आवाज़ लगाऊँ रेनू, तो रेनू बोलेगी हाँ, है ना, तो वो रेनू ठीक है, वो रेनू इस वो क्या है, वो एक मन बुद्धि यंत्र है, लेकिन वो जो आत्मन है वो उस रेनू के पीछे है, ठीक है। या फिर हम इससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हम सोचते हैं वही वापस से रिपीट हो रहा है कि मैं बहुत लोभी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, मैं बड़ी इमोशनल हूँ। तो वो कह रहे हैं तुम ये मैं करके सब गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि ये तुम मैं हो ही नहीं। यहाँ पे हमें यही समझना है, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है, और ये प्लीज़ जो भी नहीं कर रहा और आप सीरियस हो अगर आत्मबोध के बारे में, तो ये करो। जैसे आपके दिमाग में आए अरे मैं तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाती हूँ, उसकी जगह क्या बोलना है, अरे ये मन बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। आपको मैं को अलग रखना है, मैं मत जोड़ो किसी भी चीज के साथ अपने मन में, है ना। फिर वो कहती हैं कि तुम इसको मैं बोल रही, इसने बोला कि अभी रेनू बोलेगी मैं, यू नो कौन रेनू है यहाँ पे, वो बोलेगी मैं, लेकिन ये रेनू अभी थोड़े दिन की है, उससे पहले क्या पता वो शीला रही हो, उससे पहले वो क्या पता सुरेश रही हो। तो वे बता रही है तुम पता नहीं इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हो, कितनी बार तुम जन्म ले चुके हो और मृत्यु हो चुकी है, और कितने ही तुमने नाम लिए थे, है ना, कितना सब कुछ कर चुके हो। तो उसके साथ मत, वो तो चलता रहेगा, उसमें ही अगर तुम रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें उस मैं के साथ जुड़ना है जो असली में मैं है, जो बड़ी मैं है, जो रियल मैं है। फिर देखो उन्होंने आगे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जीव या ये मन बुद्धि यंत्र कौन है, ये उस आत्मन का रिफ्लेक्शन है, ये उस आत्मन का एक प्रतीति है, है ना। जैसे कि ऊपर चांद होता है, हमको पता है आसमान में एक चांद है, लेकिन हम अगर नीचे 1000 घड़े पानी के भर के रख दें तो हर घड़े में चांद की रिफ्लेक्शन नजर आएगी, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो असली चांद है, इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। लेकिन क्या 1000 चांद हो गए, 1000 चांद नहीं हुए, चांद तो एक ही है, है ना। ऐसे ही आत्मन एक ही है, लेकिन हम सब क्या हैं, हम सब अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं, उसी आत्मन के अलग अलग रूप, लेकिन ये रूप भी रियल नहीं है, ये रूप माया है। क्यों माया है, क्योंकि ये जो नजर आ रहा है वो है नहीं। जैसे आपको कोई बच्चा देखेगा अगर एक घड़े में चांद, वो बोलेगा अरे चांद तो ये रहा, है ना, उसको लगेगा ये चांद है, उसको नहीं पता कि ये चांद नहीं है, है ना। ऐसे ही हमने सोच लिया अरे ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे वो असली वाला आत्मन नहीं नजर आ रहा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मैं। फिर वो कह रही हैं रिपीट करने के लिए देखो तीन तरह के मैं होते हैं, तीन मैं, और वो तीनों जो हैं उन तीन मैं में जो दो हैं वो झूठे हैं। एक मैं जो होता है इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ कि मैं ये शरीर हूँ, दूसरा मैं जो होता है मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ, और ये दोनों ही झूठ हैं, दोनों माया हैं, इसको हम ज्ञान मार्ग पे माया बोलते हैं। सिर्फ तीसरा मैं ही सच है जो कि मैं, जो आत्मन है। इसको हम एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब हम मिराज, सबको पता है ना मिराज को हिंदी में क्या बोलते हैं,
मृग तृष्णा
ही बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि एक डेजर्ट होता है, बहुत धूप अगर हो तो वहां पे पानी नजर आता है ना, पानी नजर आता है कि नहीं सबको? या फिर आपने देखा होगा आप सड़क पे भी जा रहे हो अगर बहुत तेज धूप है तो आपको वहां पे ऐसे लगेगा कि सामने पानी है। और जब हम पहली बार ऐसा देखते हैं तो हमें पता लग जाता है, हमें लगता है कि हाँ सच में पानी है, लेकिन जब हम बिल्कुल पास जाते हैं तो हमें पता लगता है अरे पानी तो था ही नहीं, लेकिन आंखों को भ्रम हो गया था कि पानी है क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ रही थी, है ना। या फिर एक और एग्जाम्पल शंकराचार्य हमेशा देते हैं, हो सकता है आगे आएगा, कि समुद्र के पास सीपियाँ पड़ी होती है ना, जब उनके ऊपर धूप पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है कि चांदी है। तो बहुत सारे लोग जब जाते हैं ना बीचेस पे, वो दौड़े दौड़े जाते हैं, उनको दूर से लगता है अरे बहुत सारी चांदी आ गई शायद पानी में से निकल के समुद्र से, तो चलो हम जाके चांदी ले लें। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो पता लगता है कि अरे चांदी तो थी नहीं, सीपी थी, है ना। अब एक बार आपने देख लिया कि वो सीपी है, अब आप वापस जाओगे तो क्या अब आपको वो चांदी दिखनी बंद हो जाएगी? नहीं ना, अभी भी चांदी तो अभी भी दिखेगी, लेकिन अब आप भागोगे नहीं उसके पीछे, क्यों? अब आपको पता है कि वो सीपी है। तो आत्मबोध का क्या मतलब है? एक बार आप जिसको, इसको, इस सीपी को जो आपने चांदी समझा हुआ है, जब आप जान जाओगे कि ये सीपी है, फिर आप इसके पीछे भागना छोड़ दोगे। वो जो हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, वो नेचुरली अपने आप वो डिटैचमेंट हो जाता है ना। जैसे ही आपने देख लिया सीपी तो डिटैच हो गए, अब तो नहीं भागोगे उसके पीछे। हाँ मीनाक्षी जी, अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है, तो बीच में आपकी आ नहीं रही थी तो मैंने शुरू कर दिया। आगे
शरीर है और तो पांच आत्मन नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आया, इतने में नेटवर्क चला गया, मैं पूछ रही थी। अच्छा, बार बार जा रहे, बहुत पुअर कनेक्शन।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा किया आपने पूछा। देखो ये आपके दिमाग, तो आपको लगता है कि पांच शरीर है और पांच आत्माएं हैं, है ना। ये आपको क्यों लगता है? क्या ये आपने देखा है कि वहां पे पांच आत्माएं हैं? क्या आपका ये अनुभव है? नहीं है ना। तो आपको कैसे पता? आपको किसी ने बता दिया, बचपन से आपको बताया गया है कि हर शरीर में एक आत्मा होती है और आपने उसको मान लिया है, तो इसलिए वो जो चीज है आपके दिमाग में बैठ गई है कि जितने लोग हैं उतनी ही आत्माएं हैं, है कि नहीं? लेकिन ये आपका अपना अनुभव नहीं है, है ना। तो हम यहाँ पर जो चीज आपको अपने अनुभव से नहीं पता पड़े उसको हम मानते ही नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सूचना है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, पहले आपके पास सूचना क्या थी कि पांचों शरीर में पांच आत्माएं हैं, है ना। अब आपको शंकराचार्य यहाँ पे क्या सूचना दे रहे हैं कि पांचों शरीर में एक ही आत्मा है, लेकिन ये भी आपके लिए सूचना है, अभी इसको भी मान के नहीं बैठ जाना है, समझ गए? ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, जो आपकी एक पहले मान्यता थी उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी ये सूचना है। अब आपको ये सोचना है, देखो सूचना पे सोचना है कि क्या सही है, है ना। वो जो बोल रहे हैं कि पांच शरीरों में पांच आत्माएं हैं, और यहाँ पे शंकराचार्य बोल रहे हैं एक शरीर, पांच शरीरों में एक ही आत्मा है, कहाँ गई वो शायद? अच्छा है, तो अब ये आपको मनन करना है इस चीज पे, मानना नहीं है, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लोग दो चीजें करेंगे, कोई मानेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो ना शंकराचार्य में विश्वास है, तो वो जो बोल रहे हैं सही है। अब कल को आप सोसाइटी में नीचे जाओगे, वो बोलेगा अरे उसकी आत्मा, नहीं नहीं उसकी आत्मा नहीं निकली है, वो तो हमें पता है अब आत्मा नहीं निकलती है। है ना, तो अभी हमने
तो एक विरोध विरोध हो जाएगा।
वो नहीं करना है आपको, अब मनन करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, इस चीज को सोचना है, यही ज्ञान मार्ग का वो है कि क्या सच है, पांच सच है कि एक सच है, क्या सच है, इस पे सोचिए ये क्या सच है और ढूंढिए. डोंट बी इन अ हरी टू सेटिस्फाई योर माइंड. जल्दबाजी मत करिए कि मेरा माइंड सेटिस्फाई हो जाए. पहले मेरा 5 आंसर था, अब मेरा 1 आंसर है, चलो ओके आंसर 1. नहीं नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना है. यहाँ कुछ नहीं होगा उसको करने से, वहीं के वहीं रहेंगे हम, है ना. तो सोचिए कैसे ये करते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान मार्ग में सोच के भी जाना जा सकता है. अगर बुद्धि बहुत 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 तीक्ष्ण हो और गुरु साथ में मिले तो उससे जाना जा सकता है. नहीं तो हम क्या करते हैं, कैसे जाना जाता है, क्रिया योग. जैसे मैं बताती हूँ, क्रिया योग में अगर आप करते हो या जो भी कोई और योग या कोई क्रिया करते हैं, उससे आपको अनुभव होता है. आप अपने अनुभव से देख पाते हो. जैसे मैंने बोला ना, आपने क्या देखा, वो 5 की 5 आत्माएं हैं. यहाँ पे आप वो अनुभव कर पाओगे कि 5 हैं कि 1 ही है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मार्गों में डिफरेंस है दोनों में. ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पाथ्स हियर. पर मानना कुछ नहीं है. देखो फिर से वो आगे यही बता रहे हैं, नो दैट देयर इज ओनली वन आत्मन. शंकराचार्य बोल रहे हैं एक ही आत्मन है. आत्मन इज सिंगुलर, जीवा आर प्लूरल. जीव बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, है ना. तो बहुत सारे हमारे माइंड इंटेलेक्ट यूनिट्स या फिर मन बुद्धि के जो हैं, शरीर बुद्धि के यंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मा एक ही है. फॉर्म्स माइंड्स इंटेलेक्ट्स आर लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम, बट आत्मन इज इनफाइनाइट, लिमिटलेस एंड टाइमलेस. तो जैसे मेरा शरीर है या मेरा मन है, इसकी एक लिमिटेशन है ना, इसकी एक सीमा है. मेरा शरीर बस इतनी ही जगह ले सकता है, मेरा मन या मेरी बुद्धि एक पॉइंट तक ही जा सकती है. तो एक सीमाएं हैं, उसके आगे नहीं जान सकती है, सोच सकती है. लेकिन जो आत्मन है, ना उसकी कोई सीमा है, ना उसकी कोई लोकेशन है, और वो ना वो समय से बंधा हुआ है. तो इट इज़ इनफाइनाइट, लिमिटलेस, टाइमलेस. हम कई बार एक और वर्ड यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, एंड एक और है, आत्मन इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज. आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है. और वो आत्मन कौन है, वो आत्मन
omnipresent,
थैंक यू, या omniscient, omnipresent and omnipotent. या
मोनिका, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग तो थोड़ा बचपन में ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बंधन करे ही ना, बंदा शादी भी नहीं करेगा, बच्चे भी नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं.
बिल्कुल, यू नो, आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. और मैं एक और चीज बताती हूँ, जो हमारा पुराना सिस्टम था, ओके, जो हमारे थे ना, 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास. हमारा जो इंडिया का वैदिक कल्चर है पुराना, तो वहाँ पे जब आप गुरुकुल में जाते थे, 6 साल की उम्र में आपको गुरुकुल भेज दिया जाता था और आप 25 साल तक गुरु से शिक्षा लेते थे. वहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता था. हमारा इंडिया में सिस्टम यही है कि बचपन से ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. और उसके बाद वो ये नहीं बोलते कि तुम फैमिली मत करो बच्चे, उसके बाद गृहस्थ में जाओ, नेक्स्ट इज गृहस्थ में. लेकिन आप कैसे करोगे, आप बहुत अच्छे से अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाओगे और कभी भी उससे अटैच नहीं होगे. वो दैट इज द परफेक्ट वे. लेकिन क्या हुआ है, पर वही होता है, देखो ये भी ना संसार का नियम है, चीज़ें ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं. तो हाँ, वी हैव बीन एट द पीक इन स्पेशली इन मैनी कल्चर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, और भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स रहे हैं. और फिर हम वापस नीचे आ गए, हम फिर से वापस जा रहे हैं, अभी हमारा फिर से शुरू हो गया ऊपर जाना. तो वो भी समय आ जाएगा, बिल्कुल आएगा वो समय फिर से. तो एक मिनट, कितना, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है. इसका ना इंग्लिश वाली बुक में तो पेज 32 है, और इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, देखो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. वो बोलती हैं कि इन इंग्लिश यू रेफर टू योर सेल्फ एज आई विच रिजेंबल्स द नंबर 1, है ना, आई और 1 एक होता है ना. ठीक है, अब अगर तुम 1 लिखो और उसके बाद जीरोज ऐड करते जाओ, 1 0 करोगे तो 10, फिर 100,000 बढ़ता जाएगा, है ना. यू कैन गो इन टू मिलियन, जिलियन, ट्रिलियन, कितना भी आपका बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर तुम उसको एक को हटा दो, एक को, तो सब बेकार है. उसके बाद तुमने कितनी भी जीरोस लगाई होंगी, सब बेकार है.
दिस इज माइंड बॉगलिंग.
इट इज.
यस. मैं तो अभी वो आत्मा में ही अटकी हुई हूँ कि एक ही कैसा है. लोग इतने सारे, एंटायर यूनिवर्स इज फुल ऑफ पीपल एंड हाउ कैन इट बी ओनली वन.
वेरी गुड, वेरी गुड. अटकना, अटके रहो. देखो हमको अटकते ही नहीं है ना, हम तो फटाक से आंसर लेके कूद जाते नीचे. कूदना नहीं है, अटके रहो थोड़ी देर उसके ऊपर, तभी भूख आएगी, तभी वो प्यास लगेगी जानने की, है ना. तो करो बिल्कुल.
अभी तो बचपन से ये सिखाना चाहिए एक्चुअली. एट लीस्ट नाउ आई फील दैट व्हेन आई हैव माय ग्रैंडचिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई शुड टीच देम.
हाँ, पहले खुद जान लो, फिर नेक्स्ट स्टेप. पहले खुद जान लो, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग.
मम्मी का बच्चे क्या बताएंगे, फटाफट गूगल खोल के देखेंगे मम्मा सही बोल रही है.
देखो ये बात,
मम्मा हमेशा गलत ही दिखती है वैसे भी.
नहीं नहीं, देखो ये सुनने से कुछ नहीं होगा. आपने सुन भी लिया कि एक आत्मा ने, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ सूचना है,
समझना पड़ेगा पहले, तभी
जानना पड़ेगा. जानना, खुद से जानना होगा.
जब तक अनुभव ही नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला.
बिल्कुल,
वही तो सीख रहे हैं, बोध. जब हमें खुद को बोध होगा तभी तो किसी और को कराएंगे.
बिल्कुल, पहले तो खुद को सीखना है, फिर पता चले.
तो ये हम आत्मबोध क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपकी भूख और प्यास बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए. खाना तो रखा हुआ है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, है ना. खाना बना हुआ रखा है, बस भूख लग जाए आपको कि वो खाना खाना है, बस दैट्स ऑल. यही कर रहे हैं, इतना सा काम होता है.